आज एक महान संत ठाकुर भक्तिनाथ का तिरभाव है और गदाधर पंडित का आविर्भाव, और बोर्ड में आज का श्लोक भी लिखा हुआ है, तो हम श्लोक पढ़ेंगे 10 मिनट के लिए, फिर भक्तिनाथ ठाकुर की चर्चा करेंगे। और पुष्पांजलि कितने बजे है? हाँ, ये भाई ये ना ये सब का भक्तों के यहाँ 11:30 बजे इकट्ठा होना चाहिए, भजन गाएंगे ठाकुर भक्ति बजे के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्रा हा प्रेता बंधुनाम आश्रुत्या प्रेदेविताम अहं बालको भूत्वा याम स्वयं उपागतः। ततः प्रेतः बन्धूनाम् आश्रित्वा प्रदेवताम् आतन् बालको भूत्वा याम स्वयं उपागतः। ततः प्रेतः बन्धूनाम् अश्रुता प्रदेवताम् आहातन् बालको भूत्वा यामा स्वयं उपागतः। तात्पर्य ओके। शब्दार्थ
तत्र
सीधा तात्पर्य में जाओ, तात्पर्य और अनुवाद
पढ़ देता हूँ। अनुवाद, जब रानिया राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थीं, तो उनका जोर जोर का विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतएव बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। तात्पर्य, कभी कभी जीव को अपना शरीर त्याग कर यमराज के निर्णय के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, किंतु बद्ध जीव के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करना तब तक संभव नहीं होता जब तक मृत शरीर को दाह कर्म द्वारा या अन्य किसी साधन से विनष्ट न कर दिया जाए। जीव को वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति होती है और वह दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता, अतएव तब तक वह प्रेत बनकर रहता है। यदि मरा हुआ व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो यमराज उसे मुक्त करने के उद्देश्य से दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। चूंकि राजा के शरीर के जीव को उसके शरीर से आसक्ति थी, अतएव वह प्रेत बनकर मंडरा रहा था और इसी से यमराज विशेष रूप से शोकमग्न संबंधियों को स्वयं उपदेश देने के लिए उनके पास गए। यमराज उनके पास बालक वेश में गए क्योंकि बालक को कहीं भी जाने की छूट रहती है, जहां तक कि राजमहल में भी। इसके अतिरिक्त यह बालक दर्शन की बातें कर रहा था। जब कोई बालक दर्शन की बातें करता है तो लोग सुनने में बड़ी रुचि लेते हैं।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलक्य चक्षुर्मिलितनेन श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसे हम कह रहे थे आज बहुत ही शुभ दिन है। एक महान संत ठाकुर भक्तियों का तीर्थभाव और महान संत गदाधर पंडित का आविर्भाव। तो आविर्भाव गदाधर पंडित का भी तीर्थभाव। तो भागवतम के श्लोक की चर्चा केवल थोड़े समय के लिए करेंगे। तो यहाँ पढ़े हो हिरण्यकशिपु के विषय में अगर आपसे पूछा जाए हिरण्यकशिपु भक्त है या अभक्त है, असुर या असुर, पर इस अध्याय में आप देखते हो कि वो ऊंचे कोटि के संत हैं। जब उनकी माता दीति और भाभी और भतीजे रो रहे थे, क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध हो गया था भगवान के हाथों में, क्योंकि माता भाभी भतीजे सब दुखी थे। तो हिरण्यकश्यपु आए उधर उपदेश देने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा जिस प्रकार अनेक यात्री यात्रा के दौरान एक स्थान में मिलते हैं फिर जुदा हो जाते हैं, हम सब आते हैं थोड़े समय के लिए, इकट्ठे होते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु उनके भाई एक समय क्या थे, भगवान के द्वार पर, जबकि कुमारस ने प्रवेश किया था वैकुंठ धाम में, और पहले छह द्वारों से कुमारस निकल गए थे, फिर सातवें द्वार में उन्हें रोक दिया गया था जय विजय द्वारा। उन्होंने कहा तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं आ सकते, और जाए कुमारस को इतना गहरा आनंद अनुभव हो रहा था कि जब उन्होंने देखा ये द्वारपाल रोक रहे हैं उन्हें आगे प्रवेश करने से, तो उन्होंने उन्हें कहा क्रोधित होकर तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें हम श्राप देते हैं कि तुम यहां से जाओ। और जय विजय ने क्या कहा, आप जो श्राप देना चाहो दीजिए, पर हमें केवल आपके द्वारा एक ही वर चाहिए, वो क्या है कि सदा हम आपका स्मरण कर सकें। ये होना चाहिए भक्त का भाव कि वो हमेशा ऐसी स्थिति में हो कि सदा भगवान का स्मरण कर सके। और भगवान ने ये वर्तलाप सुना, बाहर आए देखने के लिए क्या घटना बीत रही है, और जब कुमार ने देखा कि भगवान का कितना गहरा संबंध है इन दो द्वारपालों के साथ, उन्होंने सोचा कि हमें यह श्राप वापस ले लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा थी तुम्हें श्राप दो। तो फिर ये प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्य के रूप में। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या कर रहे थे 100 देवताओं के सालों के लिए उन्होंने एक बूंद पानी नहीं पिया। आप लोग योगा करते हो, योगा करते हो तो अपने पांव पर खड़े होते हो, हाथ ऊपर रखते हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर रख सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट, रामदेव से आधा घंटा करता है। पर हिरण्यकश्यपु खड़े हुए थे इस पोजीशन में देवताओं के 100 सालों के लिए, अंदाजा लगाओ हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। तो इतने बड़े तपस्वी थे। यहां आप देख रहे हो इस अध्याय में कि यमराज की इस अध्याय में हिरण्यकश्यपु बहुत ऊंचा सिद्धांत दे रहे हैं वो कह रहे हैं अपनी माता को भाभी को, उदास रोने की कोई जरूरत नहीं, शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है, शरीर के लिए पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं द वाइज मैन डजंट लैमेंट फॉर द लिविंग और द डेड, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय के साथ हर व्यक्ति को शरीर त्यागना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक कथा चल रही है, एक राजा था महाराज योजना, जिसका जिसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में, और उसकी पत्नियां इतनी दुखी थी कि उन्होंने अंतिम संस्कार को रोक दिया, उन्होंने शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जाने नहीं दिया। फिर यमराज जी आए छोटे बालक के रूप में, यमराज ने कहा कि ये औरतें इतनी जोर जोर से रो रही हैं, पर ये नहीं जानते कि उनका अंत भी आने वाला है। और उन्होंने एक कथा सुनाई, एक समय एक कुलिंगा पक्षी था पत्नी और बच्चों के साथ, एक शैतान शिकारी जो पक्षियों को आकर्षित करता था अन्न फेंककर, तो उसने अन्न फेंका और वो पक्षी के बच्चे खाने गए और शिकारी के जाल में फंस गए। और फिर पक्षी की पत्नी ने कहा, पक्षी क्या कहने लगा, अब मैं कैसे क्या करूं, उदास था और उसके सामने ही उसकी पत्नी भी शिकारी के जाल में फंस गए। और पक्षी कहने लगा, अब मेरे सामने मेरी पत्नी है बच्चे हैं, पर मैं उनसे कुछ रिश्ता नहीं रख सकता। ये सोचते सोचते पक्षी भी उस शिकारी के जाल में फंस गया। तो यमराज ने तो हिरण्यकशिपु ने यह कथा सुनाई ये स्थापित करने के लिए, हम रोते हैं दुखी होते हैं जब किसी का अंत आता है, पर अंत हमारा भी आएगा। तो इसलिए हमें इस स्थिति में शो करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवतम की अभी आज तो जैसे मैंने कहा, आज एक महान संत का तिरुभाव तिथि है। आविर्भाव और तिरुभाव ये संस्कृत के दो शब्द हैं। आविर्भाव का अर्थ है जब कोई महान संत प्रकट होता है, तिरुभाव का अर्थ है जब वो प्रकट होता है। भौतिक समाज में जिस दिन व्यक्ति का देहांत होता है उस दिन हम शोक करते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोगों में वो जाते हैं फूल अर्पण करते हैं इत्यादि, पर आध्यात्मिक जीवन में हम आविर्भाव और तिरुभाव दोनों को ही उत्साह से मनाते हैं। और आज है तिरुभाव भक्तिनाथ ठाकुर और गदाधर पंडित का, क्योंकि महान संत प्रकट होते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार और अप्रकट होते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। इस विषय में महान संत भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हरिदास ठाकुर जो कि महान संत थे, नामाचार्य, 3 लाख बार दिन में जाप करते थे, उनके तिरुभाव पर उन्होंने एक कविता लिखी, ए रीजन दे गुड टेल दैट वैष्णवज डाई व्हेन दे वर लिविंग स्टिल इन साउंड, द वैष्णवज डाई टू लिव इन लिविंग ट्राई टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड। तो ठाकुर भक्तिनाथ इस प्रार्थना में कह रहे हैं, जो व्यक्ति ये कहे कि वैष्णव की मृत्यु होती है वो व्यक्ति मूर्ख है। तो आप कहे क्यों मूर्ख है, क्योंकि जो वैष्णव है वो सदा जीता है अपनी वाणी के द्वारा। जैसे व्यासदेव जी हमारे सामने प्रकट नहीं है, पर वो प्रकट है उनकी वाणी के द्वारा। वापू और वाणी दोनों ही आवश्यक हैं। वापू है जबकि महान संत प्रकट रहता है, वाणी उसकी सनातन है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा हरिदास ठाकुर के विषय में, जो व्यक्ति ये कहे कि वैष्णव की मृत्यु होती है वो मूर्ख है, क्योंकि वैष्णव जीवित रहता है किसके द्वारा? अपनी वाणी के द्वारा। जैसे प्रभुपाद, अगर कोई इस्कॉन के मंदिर में आए उसे पता नहीं लगेगा कि प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए हैं, क्योंकि जहां देखो प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद का उपदेश, प्रभुपाद की मूर्ति। महान संत प्रकट होता है अपनी वाणी के द्वारा। जो वैष्णव हैं वो उनकी मृत्यु भी होती है तो एक ही उद्देश्य के साथ कि भगवान का उपदेश देने कहाँ और जाएंगे। तो आविर्भाव का अर्थ है जबकि एक महान संत प्रकट होता है, तिरभाव का अर्थ है जब वो प्रकट होता है। और भक्तों के लिए दोनों ही उत्सव के दिन हैं, क्योंकि तिरभाव वाले दिन भी अगर महान संत अप्रकट होता है किस लिए? किसी और स्थान में पहुंचकर भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। जैसे शाम को जब सूर्य डूबता है आप ये नहीं सोचते सूर्य की मृत्यु हो गई, हम जानते हो ये रोशनी कहां और दे रहा है। तो ठाकुर भक्तिनाथ का प्रणाम मंत्र इस प्रकार से है, अब मेरे बात दोहराइए, नमो भक्ति विनोदाया सचिन नंद नाम ने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप नो घबराय ते। नमो भक्ति विनोदाय सचिन नंद नाम ने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप नो घबराय ते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मैं अपना प्रणाम करता हूं सचिनंद भक्ति विनोद को, जो कि चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शक्ति है और जो कि गोस्वामियों की शिक्षा के आधार पर हर कार्य करते हैं, खास करके रूप गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर। तो ठाकुर भक्ति विनोद चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माने जाते हैं। ठाकुर भक्तिनाथ प्रकट हुए थे एक बड़े रईस खानदान में, केदारनाथ दत्ता उनका नाम था। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात जो महाप्रभु जी का शुद्ध संदेश था वो गलत हाथों में आ गया था। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद 13 संस्थाएं बन गई थी जिसमें ये शुद्ध संदेश नहीं दिया जा रहा था, और ठाकुर भक्तिनाथ जी ने शुद्ध रूप से चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को स्थापित किया। ठाकुर भक्ति विनोद महान संत थे, चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति। उनका जन्म हुआ था बहुत ही रईस खानदान में और 2 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। 2 साल की उम्र में, 6 साल की आयु में उन्होंने रामायण और महाभारत को कंटेस्ट कर लिया था। 12 साल की आयु में उनका विवाह हुआ था और जब उसकी उनकी पत्नी थी 5 साल की तो उन दिनों में ये रिवाज था। और भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ऊंची शिक्षा ग्रहण की थी उड़िया बंगला अंग्रेजी भाषा में। ठाकुर भक्तिविनोद के दादाजी के पास योगिक शक्तियां थी जिसके द्वारा वो देख सकते थे भविष्य को, और उन्होंने ठाकुर भक्तिनोद का नाम पैदाइशी में था केदारनाथ दाता, तो उन्होंने कहा था ये केदारनाथ समय के साथ बहुत ऊंचे कोटि का संत बनेगा। तो ठाकुर भक्तिनोद जी के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, उन्हें सातवा गोस्वामी बुलाया जाता है, सेवंथ गोस्वामी। छह गोस्वामी हैं वंदे रूप सनातनो रघुवीर गोसी जो गोपाल को, और ठाकुर भक्तिनोद जी को क्या कहते हैं सातवा गोस्वामी। उन्होंने छह त्रिलंबार प्रभु जी की जो शुद्ध शिक्षा थी उसे ठीक रूप से स्थापित किया। उन्होंने जो ढोंगी व्यक्ति थे उनको समाज के बाहर किया। वैसे तो बड़े नरम दिल के थे, कोई व्यक्ति भी उनका शत्रु नहीं बना था, पर जब वो देखते थे कोई गलत काम तो उसको भी रोकते नहीं थे। ठाकुर भक्तिनोद जी इंग्लिश में बड़े अच्छे थे, उर्दू और फारसी भी उन्होंने सीखी। और ठाकुर भक्तिनोद जी ने अपने जीवन में 100 ग्रंथ लिखे, अंदाजा लगाओ। और जितने असुर गलत व्यक्ति थे उनका सुधार किया। अंग्रेजी सरकार में के जमाने में भारतीयों को ज्यादा ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, ऊंचे से ऊंचा पद जो भारतीयों को मिलता था वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इससे ऊंचा ऊंची जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तो ठाकुर भक्तिनोद को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने जितने गलत काम थे सब रोका। अंग्रेजी सरकार के समय उन दिन में जगन्नाथपुरी मंदिर में ठीक समय ऑफरिंग नहीं हो रहा था और थोड़ी बेईमानी भी हो रही थी मैनेजमेंट में। ठाकुर भक्तिनोद जी ने, ब्रिटिश सरकार ने ये जिम्मेदारी दी ठाकुर भक्तिनोद को और उन्होंने ये सब रोक दिया। बिल्कुल ठीक समय भगवान को भोग लगने लगा और जो बेईमानी थी वो सब रुक गई। उन दिनों में एक ढोंगी व्यक्ति था जो कि अपने आप को महाविष्णु का अवतार मानता था और इस के बल पर रासलीला करता था लोगों की पतियों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ। अंग्रेज सरकार को कईयों ने शिकायत की थी, कई तो उसके अंधे शिष्य थे। इस ढोंगी विष्णु के लाखों शिष्य थे, लाखों, क्योंकि उसमें योग्यता थी। बीमार व्यक्ति को ठीक कर देता था और कुछ जादू दिखाता था, पर कईयों ने उनका विरोध भी किया। तो ब्रिटिश सरकार ने भक्तिनोद ठाकुर से कहा तुम ज्ञानी हो, आप एक केस को हैंडल करो। ये जो ढोंगी विष्णु था रहता था जंगल के कोने में, तो और सारा सम्मा पुलिस सब उनसे बहुत डरते थे। उनसे डरते थे कि अगर कुछ किया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कोई पुलिसमैन, हिंदू पुलिसमैन भक्तिनोद ठाकुर के साथ जाने को तैयार नहीं था उसे गिरफ्तार करने के लिए। भक्तिनोद ठाकुर को मुसलमान पुलिसमैन ले जाने पड़े। जब वो जंगल में पहुंचे उस योगी को पता लग गया था कि केदारनाथ दत्ता आया है और उसे ये भी शक हो गया क्यों आया है। तो उस भोगस योगी ने कहा केदारनाथ दत्ता तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं हूं विष्णु का अवतार, और मैं ब्लेचों को यहां से भगा दूंगा। ब्लेचों का अर्थ था अंग्रेज लोग, अंग्रेजों को यहां से निकाल दूंगा और फिर मैं तुम्हें भारत का राजा बनाऊंगा। मेरा साथ दो, मुझे कोई तकलीफ मत दो। तो ठाकुर भक्तिनाथ ने कहा, आप अगर महाविष्णु के अवतार हो तो आप जंगल में क्या कर रहे हो? आपको तो जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजमान होना चाहिए, वहां जहां के भगवान उपस्थित हैं। ठाकुर भक्ति और तो इस ढोंगी व्यक्ति ने कहा, वो जगन्नाथ मूर्ति वो तो लकड़ी की मूर्ति है, वो भगवान थोड़ी है, भगवान तो मैं हूं। तो भक्ति ने ठाकुर जी में बड़े विनम्रता का भाव था, अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सिपाहियों को कहा, गिरफ्तार कर लो इसे। तो मुसलमान सिपाही थे, डरते डरते उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और पकड़ कर इसे ले गए पूरी, उसे ले गए। तो फिर इस के विषय में ट्रायल हुआ था, क्योंकि इसके लाखों शिष्य थे, सब मोर्चा में आ रहे थे, विष्णु को तुमने गलती की है गिरफ्तार करके। और एक और दुर्घटना हुई, जैसे ही गिरफ्तार किया, भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी वो सारे बच्चे बीमार हो गए। भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी कहने लगी, क्योंकि आपने विष्णु को गिरफ्तार किया है, यह आपकी सजा है। और भक्तिविनोद ठाकुर ही नहीं, जो पुलिस वाले मुसलमान थे उनके खानदान में बीमार हो गए। इसके ढोंगी विष्णु की इतनी शक्तियां थी। तो सब कह रहे थे, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। भक्तिविनोद ठाकुर को पता था सत्य क्या है, उन्होंने कहा किसी हालत में नहीं। और जिस दिन 18 दिन का कोर्ट का ट्रायल हुआ था, और जिस दिन उन्होंने निर्णय लिखना था, आज के जमाने में तो आप डिक्टेशन देते हो, हाँ, जज साहब वकीलों को सेक्रेटरी को, उन दिनों में वकीलों को अपना निर्णय खुद लिखना पड़ता था हाथ से। तो जिस दिन ठाकुर भक्तिनो जी ने जजमेंट लिखना था, उनका दायां साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गया, बिल्कुल पांव भी नहीं हिल रहा था, हाथ भी नहीं हिल रहा था। जब भी वो इतने दृढ़ भाव के थे कि उन्होंने जजमेंट लिखा, फिर ढोंगी विष्णु को सजा दी। और जब भी ढोंगी विष्णु को कोर्ट से ले जा रहे थे, उसके लंबे बाल थे, ये माना जाता है कि ये योगी अपनी शक्ति बाल में रखते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने सिपाहियों को कहा, काट दो इसके बाल, पर कोई किसमें हिम्मत नहीं थी काटने की। भक्तिविनोद ठाकुर खुद आए, कैंची से उसके बाल काट दिए और फिर इसने 18 दिन के बाद जेल में आत्महत्या करने कर दी। किसने? इस ढोंगी विष्णु ने। और सब कहने लगे, हाँ ठाकुर भक्तिविनोद ठीक थे, He was right। उसी प्रकार एक पेड़ में एक भूत था, जिसको जिसकी सब पूजा कर रहे थे, और एक प्रसिद्ध लड़की का पिता ठाकुर भक्तिनों से चंदा मांगने आया। ठाकुर भक्तिनों ने कहा, तुम इधर बैठो और भागवत की कथा करो। तो एक महीने के लिए भागवत कथा की इस पंडित ने। एक महीने के बाद पेड़ गिर गया, वो भूत वहां से चला गया। सब सुखी थे, केवल जो लोग इस पेड़ और भूत के द्वारा पैसा कमा रहे थे वो दुखी थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर, जैसे हमने कहा, उन्होंने शुद्ध संदेश की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा गलत संप्रदाय में आ गई थी, 13 संप्रदाय बन गए थे, और जो सहाज्या सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे उन्होंने ये सब सहाज्यापन को बंद किया। उन्होंने ग्रंथ लिखे जिसके द्वारा महाप्रभु के शुद्ध संदेश की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। ठाकुर भक्ति विनोद को कभी हमेशा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु जी की जो असली जन्म स्थान है वो नवद्वीप नहीं है। व्यापारी कारण, धंधे के कारण लोगों ने बात फैला दी थी, नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु इज बर्थ प्लेस। तो भक्तिनाथ ठाकुर को लॉजिकली वो कन्विंस नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि ये बर्थ प्लेस है, ये तो 100 साल पुराना शहर है। तो बहुत खोज रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा मेरी ट्रांसफर कर दो कृष्णा नगर में। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया, फिर उन्होंने कहा मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। पर वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि ब्रिटिश सरकार ने उनको कृष्णा नगर में पोस्टिंग दे दी। तो हर इतवार को भक्ति विनोद ठाकुर पड़ोस के इलाकों में जाते थे ये देखने के लिए कहां है महाप्रभु जी का असली जन्म स्थान। एक दिन जब अपने बरामदे में थे उन्होंने देखा गंगा के पार रोशनी, और उनका बेटा भी था, उन्हें ऐसे एक रोशनी भी दिखी और महाप्रभु नाचते हुए देखे। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर उस स्थान में पहुंचे, उस स्थान में पहुंचे और खोजने लगे, लोगों से पूछा ये स्थान का इतिहास क्या है। वो स्थान के मालिक थे मुसलमान, तुलसी के पौधे थे, और फिर उन्होंने ये स्थापित किया कि ये है चैतन्य महाप्रभु का अगली जन्म के स्थान, इसका नाम क्या है योगपित। तो उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया जिसमें हजारों भक्त थे और अपने शिक्षा गुरु, भक्तिनाथ ठाकुर के दीक्षा गुरु थे विपिन बिहारी, पर शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी। फिर उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी जिन्हें वो शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे, दिन रात केवल हरि नाम करते थे। तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को वहां लेके आए। जगन्नाथ दास बाबा जी इस समय 142 ईयर्स के थे, चलने की कोई शक्ति नहीं थी। उनका सेवक विपिन बिहारी उन्हें एक टोकरी में उठाकर ले जाता था, तो टोकरी में उठाकर लेकर आए योगपीठ में। जैसे ही वहां पहुंचे जगन्नाथ दास बाबा जी ने छलांग मारी टोकरी से और कहा यही है, यही है, यही है, दस रुपये, दस रुपये, दस रुपये, ये है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने शुद्ध संदेश की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु जी के असली जन्म स्थान की स्थापना की। उन दिनों में वृंदावन में कई डाकू थे। आप कहोगे अरे हम तो सोच रहे कि डाकू का जमाना भी शुरू हुआ, लगता है कि 200 साल पहले भी डाकू थे। और ये डाकू यात्रियों को लूटते थे जब वो जाते थे ठाकुर, क्योंकि उनका अंग्रेज सरकार में अच्छा प्रभाव था। उन्होंने अंग्रेज सरकार से शिकायत करके ये सब बनावटीपन जो है जो डाकू गिरी थी यात्रियों को लूटना बंद करवा दिया था। ठाकुर भक्तिनोद को पता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायान्य, राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जत नगर अधिग्राम सर्वदा प्रचार है वे मोर नाम, पृथ्वी के हर कोने में मेरा हरि नाम फैलेगा। तो ठाकुर भक्तिनोद जी ने एक अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ लिखा था, लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो उन्होंने विश्व के सब प्रसिद्ध महाविद्यालयों को भेजा। कौन से साल? 1896 मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में है, जहां हम जुड़े थे इस्कॉन के साथ, और वहां की लाइब्रेरी में 1967 तक जो किताब भक्तिनाथ ठाकुर ने 1896 में भेजी थी अब तक पढ़ी है। तो प्रभुपाद जी टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य को डेडिकेट करते हैं उनके गुरु को भक्तिनाथ ठाकुर को, और कहते हैं In 1896, the appearance of my book, the year of my appearance, Thakur Bhaktivinoda launched the International Sankirtan Movement. Jis saal Prabhupada ji prithvi par prakat hue the, usi saal Thakur Bhaktivinoda ji ne jo granth likha tha Chaitanya Mahaprabhu ke upar, us granth ko unhone bheja vishw ke anek prasidh महाविद्यालयों में। जैसे मैंने कहा, मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में 1967 तक वो किताब वहीं थी। तो इसे आप देख सकते हो ग्रंथों के वितरण का प्रभाव। मैं भक्तों को अक्सर कहता हूं ठाकुर भक्तिनाथ वॉज द फर्स्ट बिग इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने अपना ग्रंथ भेजा सारे विश्व के महाविद्यालय में। ठाकुर भक्तिनाथ जी की भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के कोने कोने में, और उन्होंने उन देशों का नाम भी लिया, इंग्लैंड रशिया जर्मनी, ये हरि नाम पहुंचेगा और लोग मृदंग का करतल बजाएंगे, और एक दिन एक महान संत बहुत जल्दी प्रकट होगा जो कि एक महान संत प्रकट होगा जो कि चैतन्य महाप्रभु को के संदेश को सारे विश्व में पहुंचाएगा, महासेनापति। वो महासेनापति कौन थे? और उनकी यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के हर कोने से लोग आएंगे मायापुर धाम में, बंगला भक्तों के साथ नाचेंगे और गाएंगे। ये तीनों भविष्यवाणियां सच निकल गई है। तो भक्तिनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी ने एक दिन, प्रभुपाद जी लंदन में लेक्चर दे रहे थे भक्तिनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि पर, तो प्रभुपाद जी ने कहा ही इज वर्चुअली द फाउंडर ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी संसार आचार्य हैं, तो भक्ति प्रभुपाद जी ने खुद कहा कि हमारी संस्था के असली संस्थापक आचार्य हैं कौन? ठाकुर भक्ति। ठाकुर भक्तिनोद जी ने शुद्ध भक्ति की स्थापना की थी, और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके अप्रकट होने के पश्चात कोई ऐसा संत आए जो कि उनके काम को आगे बढ़ा सके। इस प्रार्थना के उत्तर में प्रकट हुए थे कौन? भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर। क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे अंग्रेजी सरकार में, तो ये रिवाज था, पता नहीं आज है या नहीं, कि जो रथ है उनके घर के सामने रुकता था। तो उनका घर के सामने रात रुका था, तो उनकी पति ने अपने बेटे को भगवती दासी ने बिमला प्रसाद को उठाकर जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। वो जैसे ही रखा, एक हार जगन्नाथ जी के हाथों से जो हाथों में था गिर गया इस बच्चे के गले में। और भक्ति सिद्धांत जी जब प्रकट हुए थे, जब उनकी अम्बिकल कॉर्ड लपेटी हुई थी शरीर में, जैसे हम ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, तो भक्तिनाथ ठाकुर समझ पाए इन लक्षणों के द्वारा कि ये जो लड़का है, वैसे तो उनके सारे बेटे अच्छे भक्त है, ये जो बेटा है ये भगवान ने भेजा है खास करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने शुरू से ही भक्ति सिद्धांत जी को बड़ी गहरी शिक्षा दी। एक कुर्मा शीला था, वो भी दिया पूजा करने के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने सजना तोषणी की स्थापना की और उन्हें गौड़ीय वैष्णव सभा ने भक्ति विनोद का टाइटल दिया था। गौड़ीय वैष्णव सभा ने ठाकुर भक्ति विनोद बहुत ही मेहनती थे। आप अगर उनका शेड्यूल सुनोगे तो आश्चर्य हो जाओगे। आप सुनना चाहते हो? एक शर्त पर, आप भी अपना शेड्यूल इस प्रकार का बनाओगे। अगर आपका शेड्यूल रहेगा 12 घंटे विश्राम, फिर मत सुनो। सुनना चाहते हो? 24 घंटे में 3 घंटा वो सोते थे बस। जो हमारे गोस्वामी हैं वो 1.5 घंटा सोते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं स्लीप इज डेथ, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो 3 घंटा सोते थे। ग्रंथ लिखते थे 9 घंटा दिन में। जैसे मैंने कहा, उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की, अंग्रेजी, उड़िया और बंगला भाषा में। वो जाप और पढ़ते थे 4 घंटे और कचहरी की ड्यूटी थी 6 घंटे। सुबह उठते थे 8 से 10, सुबह 2 घंटे आराम करते थे, सुबह 10 से 4, रात को 10 से 4 लिखते थे, 4 से 4:30 विश्राम करते थे, 4:30 से 7 बजे सुबह जपमाला करते थे अपनी जपमाला, 7 से 7:30 पत्र वगैरह लिखते थे लोगों को, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद ने प्रचार शुरू कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद जब वो उपदेश देते थे भगवत का, हजारों लोग सुनने आते थे उनके। वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे समाज के उन दिनों में। तो 7 से 7:30 कॉरेस्पॉन्डेंस, 7:30 से 9:30 तक रोज सुबह 2 घंटा शास्त्रों का वो अध्ययन करते थे। शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है। फिर 9:30 से 10 प्रसादम और स्नान। उनकी खुराक क्या है सुनना चाहते हो? 1/2 लीटर दूध, फल और केवल 2 चपाती। आपको भी खुराक दे दे, 2 चपाती प्रजहरी, बस 2 चपाती। 10 से 1 कचहरे का काम। कचहरे के काम के विषय में ये मैं बताऊंगा। भक्तिनाथ ठाकुर इतने तेज थे, वो मैजिस्ट्रेट थे मतलब जज, इतने तेज थे कि जो केस किसी और जज को 1 महीना 15 दिन लगता था, वो 2 घंटे में खत्म कर देते थे, अपना निर्णय दे देते थे। तो इसके कारण जो अंग्रेज वकील भी थे उनके प्रति ईर्ष्या रखने लगे कि भक्तिनाथ ठाकुर इतना तेज है, एक मिनट में जजमेंट, दो घंटे में जजमेंट दे देता है। वे एक से दो घर में आते थे, वैसे आजकल भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का घर और मकान बाजू बाजू में ही है, तो वही सिस्टम था। फिर दो से पांच फिर कचहरी की ड्यूटी, पांच से सात अनुवाद, और रात को सात से आठ प्रसाद, आधा लीटर दूध, चावल और दो चपाती बस। तो दिन में चार चपाती, एक लीटर दूध और थोड़ा फल, ये थी इनकी खुराक। आप तैयार हो इसलिए? कोई नहीं, आपने तो पहले कहा था सब न करो। और दिन में केवल तीन घंटे ही विश्राम। हमारे जो गोस्वामी थे वो तो एक डेढ़ घंटा विश्राम करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी खुराक के लिए एक चम्मच दो चम्मच मक्खन खाते थे बस। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अनेक सुंदर रचनाएं दी हैं, पर समय का भाव है तो मैं एक पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, ठीक है? ये है उनका ग्रंथ शरणागति से। शरणागति का अर्थ क्या है कौन बताएगा? शरणागति का अर्थ क्या है? टू सरेंडर। तो आप में कितने भक्त हो जो भगवान के शरणागत होना चाहते हो? सब, शुद्ध भक्तों की सभा है। तो ये संदेश आपके लिए है। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं? यू शुड ऑलवेज एब्सॉर्ब योर माइंड इन अटेंटिवली चैंटिंग कृष्णास ग्लोरीज। अपने मन को सदा लीन रखो किसमें? ध्यान पूर्वक जाप करने के लिए। कृष्ण भगवान की महिमा गुणगान करते हो कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। ठाकुर भक्ति कह रहे हैं तो हमेशा अपने मन को लीन रखो किसमें? भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में। बाय परफॉर्मिंग कृष्णा कीर्तन यू विल गेन मास्टरी ओवर द माइंड। तो अक्सर आप सुनते हो मन चंचल है, मन कष्ट दे रहा है, मन को वश में कैसे लाए, है ना? तो भक्तिनाथ ठाकुर आपको उपाय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम कृष्णा का कीर्तन करोगे तो इसके द्वारा मन पर वश रख सकोगे। अगर मन को वश में लाना चाहते हो तो घबराने की कोई बात नहीं। क्या करो? भक्तिनाथ ठाकुर के अनुसार कृष्णा का जाप करो, कीर्तन करो। जाप करोगे, कीर्तन करोगे, चैतन्य दर्पण मार्जनम होगा और खुद ही खुद मन वश में आ जाएगा। गेव अप ऑल फॉल्स प्राइड। क्या त्यागो? क्या त्यागो? ये तो बहुत कठिन है। कलयुग में सबका झूठा अहंकार है ना। शरीर का वजन होता है 60 किलो, अहंकार का वजन है 120 किलो। तो यहां भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे झूठा अहंकार छोड़ो, त्यागो। क्या है हमारा झूठा अहंकार? हम इतने अच्छे भक्त हैं, हमारे में इतनी योग्यताएं हैं, हम इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो कहते हैं झूठा अहंकार को तोड़ो। ऑलवेज थिंक योरसेल्फ टू बी वर्थलेस, डेस्टिट्यूट, लोअर एंड मोर हम्बल देन स्ट्रॉन्ग इन द स्ट्रीट। हमेशा सोचो क्या? ये सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। उदाहरण के लिए कृष्णदास काविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृता नाम का ग्रंथ दिया है, वो कहते हैं मेरा नाम भी मत लो, मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो गलती से भी मेरा नाम नहीं लो। और हमारी क्या स्थिति है? अगर कोई हमारा नाम नहीं ले तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो यहां भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, विनम्रता का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमेशा सोचो कि तुम निकम्मे हो, सबसे पतित हो, घास से भी ज्यादा पतित। जैसे महाप्रभु ने कहा उस प्रसिद्ध श्लोक में, जिना नबी सुनी चाहिए ना मन न मना कि अगर आप सदा हरि के नाम लेना चाहते हो तो विनम्रता का भाव बिल्कुल आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं अहंकार को छोड़ो, घास से भी ज्यादा पतित, घास से पतित कहीं हो सकता है? हर व्यक्ति घास पर चलता है, नहीं पर घास कुछ कहता है? आप घास के सिर पर पैर रखते हो, आपके सिर पर कोई पैर रखे आप सोओगे? कहोगे अंधा है, कभी चलते चलते किसी का पैर आ जाता है आप पर, तो एकदम आप लड़ने को तैयार हो जाते हो, है ना। पर यहां भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि अपने आप को सबसे पतित मानो, फिर प्रैक्टिस फॉरगिवनेस लाइक द ट्री, फॉरगिवनेस क्षमा। भक्ति विनोद ठाकुर में 26 के 26 गुण थे, 26 गुणों का वर्णन चैतन्य चरितमृत में है, जिसमें एक है क्षमा। जो जो भक्त है उसमें क्षमा की भावना होती है, वो ये नहीं सोचता नेले पे देला टिट फॉर टैट, वो ये नहीं सोचता तुमने एक थप्पड़ मारा मैं दो मारूंगा, उसमें क्षमा की भावना। देखिए युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्ति पर उन्होंने धृतराष्ट्र से क्या कहा, आपके सारे बेटे पोतों सबका देहांत हो गया है, आपको आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूं? उन्होंने महल दे दिया रहने के लिए, जिसके इतनी अच्छी सुविधा दी कि धृतराष्ट्र सोचने लगे अब मैं राजा बन गया, अगर कोई और होता तो बदला लेता। तो भक्त में क्षमा की भावना होनी चाहिए, अगर कोई गलती करे भी तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं प्रैक्टिस फॉरगिवनेस लाइक द ट्री। पेड़ का उदाहरण क्यों दिया जाता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो ठंडी हो, पेड़ हमेशा आपकी सेवा करता है। तो हमेशा क्षमा की भावना रखो। Give up all violence towards other living entities. किसी के प्रति हिंसा का भाव मत रखो। आजकल इतना दुख होता है देखकर कि धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं का अत्याचार किया जाता है। जैसे नेपाल में यह भारी भूकंप आया था और नेपाली लोग भी कह रहे हैं धर्म के नाम पर लाखों बकरियों का काटा जाता है। तो जो भक्त है वो चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। तो यहां ठाकुर भगवान जी कह रहे हैं प्रैक्टिस गिव अप ऑल वायलेंस टुवर्ड्स अदर लिविंग, किसी के प्रति कष्ट मत करो, चींटी को भी कष्ट मत दो। यू शुड मेंटेन देम, सबकी देखभाल करो। थ्रूआउट योर लाइफ यू शुड नेवर गिव एंग्जाइटी टू अदर्स, किसी को अपने कारण किसी की चिंता मत बढ़ाओ। ये नहीं कि हमें अपने स्वार्थ को देखना है, दूसरा व्यक्ति नरक में भी जाए हमें क्या परवाह। तो ठाकुर भक्तिनाथ कह रहे हैं अपने कारण किसी और को कभी भी किसी प्रकार का चिंता मत दो। डू नॉट बी अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी टू एवरीवन। यानी हम जाप करेंगे इतनी जोर से हमें अच्छा लगता है, दूसरा व्यक्ति अपना जाप सुन सके या नहीं। हमें किसी कारण भी किसी को चिंता नहीं देनी चाहिए। बट डू गुड टू देम मेक देम हैप्पी, ऐसा काम करो जैसे समाज का सुधार हो, उनको खुश करो। एंड फॉरगेट अबाउट योर ओन हैप्पीनेस। ठाकुर भक्तिनाथ जी बहुत ऊंचा सिद्धांत दे रहे हैं, कह रहे हैं अपनी चिंता मत करो अपनी खुशी की, दूसरों की खुशी की चिंता करो। और अगर आप दूसरों की खुशी की चिंता करना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रचार। प्रचार एक सेवा है जिसके द्वारा आप दुखी व्यक्तियों को सुखी बना सकते हो। देन व्हेन यू बिकम अ पायस गुड सोल बाय पोजेसिंग ऑल गुड क्वालिटीज यू गिव अप योर डिजायर फॉर फेम एंड ऑनर। तो ठाकुर भक्तिनाथ जी कह रहे हैं जब तुम्हारे में अच्छे गुण अनुकूल होंगे फिर तुम ये इच्छा आदर प्रतिष्ठा ये छोड़ सकते हैं। भौतिक समाज में हमें आदर चाहिए, आदर चाहिए नहीं चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा मान ये सब भाव छोड़ो। अपने हृदय को हम्बल हम बनाओ, मेक योर हार्ट हम्बल। ये विनम्रता का भाव अनुकूल करना शास्त्रों में बार बार किया जाता है, क्योंकि अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हो तो धन की आवश्यकता नहीं, खूबसूरती की आवश्यकता नहीं, पर क्या चीज की आवश्यकता है? विनम्रता का भाव, इसकी आवश्यकता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि विनम्रता का भाव करो। ये नो दैट श्री कृष्ण लिव्स विद इन ऑल लिविंग बींग्स, यू शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर एवरीवन एट ऑल टाइम। ये मानते हुए कि परम भगवान हरे के हृदय में विराजमान है, तुम्हें सब प्राणियों को आदर देना चाहिए। हम सब प्राणियों को आदर क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से रजते, हम जानते हैं कि हर प्राणी के हृदय में कौन है? भगवान। इसलिए हम सब प्राणियों को आदर देते हैं। You will attain virtue by being humble, merciful, respecting others. आप अनेक गुणों को प्राप्त करोगे विनम्रता के भाव से। दया, भक्त जो है दयालु होता है। दयालु मतलब वो जानता है कि अगर किसी को सुख चाहिए तो भगवान के शरणागत होना चाहिए। और दूसरों को आदर दो और आदर की इच्छा को त्यागो। In such a state, you should sing the glories of the Supreme Lord, weeping. Bhaktivinoda Thakur prays, the Lord is sweet. Oh Lord, when will you give me such qualities as these? So, Thakur Bhaktivinoda ki vinamrata dekho. Wo keh rahe hain ki main Bhagwan se prarthna karta hoon, ab kab mujhe ye sab gun doge? Ye sab gun hain unme. Par wo keh rahe hain kya? Ye gun mujhe kab doge? Ye hai bhakt ka भाव। चैतन्य चैतन्यवित में कहा गया है, भगवान के भक्त उनमें सारे गुण होते हैं, पर वो सोचते हैं कि हमारे में बिल्कुल गुण नहीं। वो जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं? हमारे में सारे गुण हैं। तो ये रचना जो मैंने पढ़कर सुनाई, ये भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति रचना से है। और इस तीर भाव के उत्सव पर हमें भक्तिविनोद ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे में भी ये गुण अनुकूल कर पाए। आप सब अनुकूल करना चाहते हो ये गुण? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे में भी ये शक्ति आए कि ये गुण प्राप्त हो। और ठाकुर भक्तिविनोद जी को एक समय ब्राह्मणों की सभा में निमंत्रण दिया था उपदेश देने के लिए, वो जा नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य कमजोर था। उन्होंने भक्ति सिद्धांता जी को भेजा, जिन्होंने पहले तो शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की, जिसके कारण ब्राह्मण समाज बड़ा प्रसन्न था। फिर आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है कर्मों के आधार पर, पैदाइशी के आधार पर नहीं, जो ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। तो ठाकुर भक्तिनाथ पहले महान आचार्य थे जिन्होंने ये स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं प्रभुपाद जी की दया से। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, ठाकुर भक्तिविनोद क्या ठाकुर भक्तिविनोद वैकुंठ धाम के व्यक्ति थे, जो प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी के शुद्ध संदेश की स्थापना करने के लिए। हमारा बड़ा गहरा आभार है आप सब भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए। उसे प्रार्थना कीजिए अब भक्ति में आगे बढ़ो। और आज के दिन गदाधर पंडित भी प्रकट हुए थे। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के एक साल लगभग भार बाद में प्रकट हुए थे। हमेशा गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहते थे हमेशा, और उन्हें रुक्मिणी राधा का अवतार माना जाता है रुक्मिणी के भाव में। गदाधर पंडित के मन में सदा एक ही भावना थी, महाप्रभु की सेवा, और महाप्रभु को रोज वहाकर चंदन लगाते थे और उनके लिए फूल से बिस्तर बनाते थे। और महाप्रभु का एक और नाम है गदाधर प्राण, जो हमेशा गदाधर के प्राण थे। और गदाधर पंडित और महाप्रभु एक दिन शिवा संगम में कीर्तन कर रहे थे। जैसे कीर्तन बढ़ते गया, गदाधर का रूप हो गया ब्लैकिश काला, भगवान कृष्ण जैसे, और गदाधर का रूप हो गया गोल्डन, राधा रानी जैसा सोनार के रंग का। तो गदाधर पंडित के मन में एक ही भाव था, चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा। और तोता गोपीनाथ की मूर्ति है जिनकी वो सेवा करते थे। महाप्रभु के बूढ़ी आयु में रोज वो तोता गोपीनाथ को हार चढ़ाते थे, पर फिर समय के साथ बूढ़े हो गए तो नहीं कर पाए। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मेरा भक्त ये हार चढ़ा सके, भगवान बैठ गए। ये खड़े में वो लंबे थे तो गदाधर उनको बूढ़ी उम्र में हार नहीं चढ़ा पाए। तो पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है जिसमें गोपीनाथ जी भगवान बैठे हुए हैं, और वो है छोटा गोपीनाथ। भगवान क्यों बैठे? क्योंकि गदाधर पंडित से वो सेवा ले सके। तो आज गदाधर पंडित का भी तिरुभाव तिथि है, और गदाधर पंडित के तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्तियों जी 1914 में वो प्रकट हुए थे। तो आज के शुभ दिन पर हमें गदाधर पंडित और भक्तिनाथ ठाकुर दोनों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भीख मांगनी चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े। ठाकुर भक्तिनाथ की, गदाधर पंडित की, गौर प्रेमानंद, हरे कृष्णा। ओके, पुष्पांजलि का क्या शेड्यूल है? यू शुड अनाउंस व्हाट टाइम। हाँ, बट फर्स्ट समबडी शुड सिंग ये आनी लो प्रेम धना। आरती इज 12:30 नो? व्हाट टाइम यू हैव टू स्टार्ट? एंड प्रेम धना, ये आनी लो प्रेम धना। Invite people at 12 o'clock then. Huh? Somebody should announce the schedule. But many people are here now who may not know. Aaj 12 baje hoga, Pushpanjali shuru hogi, kirtan, but people. 12 बजे कीर्तन में एक खास प्रार्थना गाई जाएगी, जो कि हम गाते हैं संतों के अप्रकट होने के दिन पर। ये आनी नो प्रेम धना, तो अब सब आइएगा, अदरवाइज नोबडी विल बी हियर एट 12 o'clock। ओके, वी स्टॉप। हरे कृष्णा। ठाकुर भक्तनाथ की, राधा पंडित की, गौर प्रेमानंद।